Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। अमेरिका में ज़ायनी लॉबी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से अपने हितों को साधने का काम करती है। दोस्तों, अमेरिका में लॉबिंग पॉडकास्ट का ये 8वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। हमने पिछले एपिसोड में अमेरिका में ज़ायनी लॉबी के प्रभाव के बारे में बात की थी। हमने बताया था कि ज़ायनिज्म सिर्फ दक्षिणपंथी यहूदियों से विशेष नहीं है, बल्कि कई ईसाई दक्षिणपंथी भी इस विचारधारा से प्रभावित हैं और वो खुद को ईसाई ज़ायनी कहलाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इसका एक उदाहरण है। तो हमने बताया कि अमेरिका में ज़ायनी लॉबी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से अपने हितों को साधने का काम करती है। आधिकारिक लॉबी में वो संगठित समूह और संगठन शामिल हैं जो कांग्रेस, सेनेट या प्रशासन को सीधे प्रभावित करने और इसराइल के हितों के मद्देनज़र प्रस्तावों को निर्देशित करने का प्रयास करते हैं। आधिकारिक लॉबी का एक सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, जिसे आईपेक के नाम से जाना जाता है। ये एक रजिस्टर्ड लॉबी है। इसके अलावा ऐसे समूह और संगठन भी हैं जो सीधे तौर पर सरकारी विभागों और प्रशासन को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जानकारी एकत्रित करके चुनावों और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये समूह कभी कभी किसी विशिष्ट मामले में सीधे पैरवी करते हैं, लेकिन उनकी गतिविधि का दायरा आईपेक जैसी लॉबी जितना विस्तृत नहीं होता। सामान्य तौर पर ज़ायनी लॉबी प्रभाव के लिए दो व्यापक रणनीतियों का पालन करती है। सबसे पहले ये कांग्रेस और प्रशासन पर दबाव बनाती है और इस तरह से अपना प्रभाव बढ़ाती है। दूसरी ये कि राजनेता या वकील, चाहे जो भी विचार रखते हों, ये लॉबी उनके सामने इसराइल के समर्थन को एक श्रेष्ठ विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश करती है। इसके अलावा ज़ायनी लॉबी ये सुनिश्चित करने की बड़ी कोशिश करती है कि सार्वजनिक चर्चाओं में इसराइल की सकारात्मक छवि पेश की जाए। सार्वजनिक चर्चाओं में विचारों को खास दिशा देकर वो अपना ये उद्देश्य हासिल करने की कोशिश करती है। मोटे तौर पर अमेरिका में ज़ायनी लॉबी जिन उपकरणों का इस्तेमाल करती है वो इस प्रकार हैं। कांग्रेस में प्रभाव, दरअसल इसी प्रभाव की वजह से कांग्रेस एक ऐसी जगह है जहां इसराइल की आलोचना नहीं हो सकती। कांग्रेस की ये परंपरा बन गई है कि इसके खिलाफ चलने या उसे बदलने का किसी में साहस नहीं है। इसराइल जिस मुद्दे पर भी अपनी खास राय रखता है उसे फिर संभावित आलोचना से ऊपर रखा जाता है। ये कांग्रेस में ज़ायनी शासन या इसराइल का समर्थन करने वाले सांसदों की सक्रियता से आता है, जो ज़ायनी शासन का समर्थन करना अपनी प्राथमिकता और कर्तव्य मानते हैं। व्हाइट हाउस में पैट। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करना बहुत महत्वपूर्ण चुनावी रणनीति मानी जाती है। कांग्रेस के चुनावों की तरह राष्ट्रपति चुनावों में भी ज़ायनी लॉबी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ज़ायनी लॉबी इसराइल के आलोचकों को अमेरिकी राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नौकरियां हासिल करने या ऊंचे पदों पर पहुंचने से रोकने की कोशिश करती है। जिमी कार्टर जॉर्ज बॉल को अपना पहला विदेश मंत्री चुनना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि बॉल ज़ायनी शासन के आलोचक हैं और इसराइली लॉबी इस नियुक्ति का विरोध करेगी। यही कारण है कि हर राजनेता को खुलकर इसराइल का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसी कारण से इसराइल के आलोचकों को इस देश के राजनीतिक क्षेत्र में जगह नहीं मिलती है। ज़ायनी लॉबी अपने विचारों के खिलाफ छोटे से छोटे सुझाव को भी बर्दाश्त नहीं करती। मीडिया नियंत्रण। ज़ायोनी लॉबी द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने के संबंध में ये जानना उचित होगा कि ये लॉबी कभी भी मीडिया में ज़ायोनी शासन और इसराइल या उससे संबंधित मुद्दों के बारे में खुली चर्चा बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि इससे अमेरिकी सहायता के स्तर और कई अन्य मुद्दों पर सवाल उठ सकते हैं। इसराइल समर्थक संगठन जनमत तैयार करने में मदद करने वाले संगठनों पर बहुत गहरा प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं और वे ऐसा करने में सफल भी रहे हैं। अमेरिका में ज़ायोनी लॉबी का चौथा उपकरण है बौद्धिक संसाधनों का उपयोग। ज़ायोनी लॉबी ने हमेशा बौद्धिक संसाधनों में रुचि दिखाई है। सार्वजनिक बहस और व्यापारिक या व्यवहारिक नीतियों को आकार देने में बौद्धिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 1985 में जब मार्टिन इंडिक ने वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी की स्थापना में मदद की, तो लॉबी ने अपना खुद का थिंक टैंक स्थापित किया। हालांकि वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट ने इसराइल से संबंधित मामलों में कोई खास भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन महत्वपूर्व के मुद्दों पर संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने का दावा करने के बावजूद इसने ऐसे लोगों की मदद दी है जो ज़ायोनी शासन का दिल से समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि ज़ायोनी लॉबी का प्रभाव वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट से कहीं आगे तक है। पिछले दशकों में इजरायली समर्थक लॉबियों की अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी, इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन पॉलिसी रिसर्च, हेरिटेज फाउंडेशन, हडसन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन पॉलिसी में महत्वपूर्ण उपस्थिति रही है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करना। अमेरिका में एक ऐसा स्थान जहां बहसों को निर्देशित करने में ज़ायोनी लॉबी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विश्वविद्यालय हैं। ज़ायोनी लॉबी ने शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा जमाने की बहुत कोशिश की। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इसराइल की आवाज़ माने जाने वाले कारवान फॉर डेमोक्रेसी जैसे नए समूह तेजी से उभर कर सामने आए हैं। सार्वजनिक मामलों में यहूदी परिषद जैसे पुराने समूहों ने भी इस क्षेत्र में प्रवेश किया और यूनिवर्सिटी स्पेस में इसराइल नामक एक नए समूह की स्थापना की। इसे उन विभागों के बीच समन्वय के लिए बनाया गया था जो इसराइल का समर्थन करते हैं। आईपेक ने शैक्षणिक गतिविधियों को नियंत्रित करने और इसराइल का समर्थन करने वाले युवाओं को शिक्षित करने के लिए अपने वित्तीय कार्यक्रमों की मात्रा 3 गुना कर दी है और इस तरह इसराइल का समर्थन करने के राष्ट्रीय प्रयासों में शैक्षणिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में सक्रिय छात्रों को शामिल किया गया। इसके अलावा ये लॉबी इस बात पर भी नज़र रखती है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्या लिखते हैं या पढ़ाते हैं। एक कट्टर इसराइल समर्थक नौ रूढ़िवादी डैनियल पाइप्स ने कैंपस वॉच नामक एक वेबसाइट बनाई जो संदिग्ध स्कॉलरों और प्रोफेसरों पर नज़र रखती है और छात्रों को इसराइल के प्रति शत्रुतापूर्ण बयानों और व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। शोधकर्ताओं को ब्लैकलिस्ट करने और धमकाने के इस स्पष्ट प्रयास के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसके बाद पाइप्स ने साइट से इस हिस्से को हटा दिया, लेकिन वेबसाइट अभी भी छात्रों को इसराइल विरोधी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ज़ायोनी लॉबी का आखिरी हथियार यहूदी विरोध भावना का आरोप है। ज़ायोनी लॉबी की चर्चा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसके सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हथियार यहूदी विरोधी होने या एंटी सेमिटिज्म के आरोप का उल्लेख न किया जाए। अमेरिका में अगर कोई शख्स इसराइल की नीतियों और उसके अत्याचारों की आलोचना करता है या अमेरिकी राजनीति पर ज़ायोनियों के अधिक प्रभाव की बात करता है तो उस पर तुरंत यहूदी विरोधी भावना का आरोप लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई ये कह दे कि अमेरिका में एक प्रभावशाली इसराइली लॉबी है जो अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करती है तो उस पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगा दिया जाता है। वहीं ज़ायोनी मीडिया अपने आलोचकों के खिलाफ इस शब्द का आसानी से इस्तेमाल करता है। ये लॉबी अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है, लेकिन जैसे ही कोई इस तरफ जनता का ध्यान दिलाने का प्रयास करता है ये लॉबी उस पर हमलावर हो जाती है। ये एक प्रभावी रणनीति है क्योंकि यहूदी विरोधी भावना के आरोप से आसानी से सहानुभूति हासिल की जा सकती है। अमेरिकी राजनीति पर ज़ायोनी लॉबी का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि उसने हमेशा के लिए इस देश को इस्लामी गणराज्य ईरान के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल ईरान के प्रति नफरत और टकराव अमेरिका में ज़ायोनी लॉबी और ज़ायोनी शासन के प्रभाव का नतीजा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ज़ायनी लॉबी ने हमेशा इसराइल के लिए हर खतरे को सबसे बड़ा खतरा बनाकर पेश करने की कोशिश की। इस बीच उसने ईरान को संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खतरनाक दुश्मन के रूप में पेश करने का भी प्रयास किया। उदाहरण के रूप में तत्कालीन ज़ायनी रक्षा मंत्री बिन्यामिन बिन अली यारेज ने इराक युद्ध से एक महीने पहले कहा था, इराक एक समस्या है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो आपको पता होना चाहिए कि आज ईरान सबसे बड़ी समस्या है और ये इराक से भी ज़्यादा खतरनाक है। नवंबर 2002 में द टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में शेरोन ने ईरान से युद्ध करने के लिए अमेरिका पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध देश के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा था कि बुश प्रशासन को इराक पर विजय हासिल करने के बाद अगले दिन ईरान से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़ायनी लॉबी और उसके समर्थकों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और इस्लामी गणराज्य ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दुश्मनी जारी रखने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के महत्वपूर्ण तत्व कुछ इस तरह हैं। रुकावटें उत्पन्न करना। ज़ायनी लॉबी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक मंचों पर हमेशा से इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ प्रस्तावों को पारित कराने में सक्रिय रही है और उसने शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा तकनीक हासिल करने के ईरान के रास्ते में कई तरह की रुकावटें खड़ी करने का भी प्रयास किया। उसने इसके लिए अमरीकी प्रभाव का भी इस्तेमाल किया है, जबकि इस अवैध शासन के पास परमाणु हथियार हैं और अब तक उसके हाथ लाखों लोगों के खून से रंगीन हो चुके हैं। ज़ायनी लॉबी का मानना है कि इस तरह की रुकावटों से ईरान के अंदर राजनीतिक माहौल को बदलने के प्रयासों के लिए आवश्यक समय मिल जाएगा और इससे ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिससे ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने पर मजबूर हो सकता है। डिटरेंस या निवारण रणनीति। ईरान विरोधी इस लॉबी के पास कई प्रस्ताव हैं। सबसे पहले वो ईरान का मुकाबला करने के लिए इसराइल को मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती प्रदान करने में मदद करती है। इस तरह से ज़ायनी ईरान को खतरे के रूप में पेश करते हैं और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं। इस रणनीति के ढांचे में ज़ायनी विरोधी भी ईरान का मुकाबला करने के लिए कूटनीति को एक प्रभावी विकल्प नहीं मानते। वे इस्लामी गणराज्य ईरान की परियोजनाओं की गतिविधि धीमी करने और इस देश को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सैन्य अभियानों और गुप्त आतंकी हमलों सहित आक्रमण कार्यवाही का सुझाव देते हैं। इसके लिए वे दो समाधान पेश करते हैं। एक, ज़ायनी शासन को ईरान की सैन्य और परमाणु परियोजनाओं और सुविधाओं पर हमला करने की अनुमति देना और दूसरे, इस्लामी गणराज्य ईरान की सैन्य सुविधाओं पर सीधा हमले के लिए अमरीका को तैयार करना।